ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक 62% से अधिक मतदान की खबर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार लगातार तेज हो रहा है। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने स्वीप पहल के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज राजधानी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट मामले में कहा है कि आयोग कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीआई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सीबीएसई ने एक बयान में कहा कि 12वीं में कुल 87.98% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ये प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में 0.65% अधिक है। 24,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 95% से अधिक अंक हासिल किए हैं और 1,16,000 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6.40% अधिक है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.60 रहा। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.75 है जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.71 है। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.cbseresults.nic.in और www.cbse.gov.in के साथ साथ डिजी लॉकर और उमंग ऐप्स पर भी देखे जा सकते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं।
कक्षा 12 में हमारा जो 2023 में रिजल्ट था वो 87.33% था जो बढ़कर 87.98% हो गया जिसमें कि 0.65% का इजाफा हुआ है। क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो 93.12% से बढ़कर 93.60% हो गया जिसमें 0.48% का इजाफा हुआ है। मेरा कहना यह है कि हमारे बच्चों ने जो हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की बात की और जब हम लेकर आए वो बड़ा डिफिकल्ट समझा जा रहा था, बच्चों ने उसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया है और उससे ये पता चलता है इस रिजल्ट के इम्प्रूव होने से कि हमारे बच्चों ने, हमारे स्कूल से, हमारे टीचर्स ने हमारे जो इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट को है उसको एक्सेप्ट किया है और उसको समझ लिया है। अब हमारे जो रिजल्ट घोषित हुए हैं वो बहुत सारे चेक्स के बाद हुए हैं। बोर्ड ने जो है अब की बार लगभग 40,00,000 बच्चों की परीक्षाएं कराई। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो 4 दिन के बाद आज से हमारी कक्षा 12 का और 7 दिन के बाद कक्षा 10 का जो है वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसेस शुरू होगा। ऑनलाइन जाके बच्चे उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें उनके मार्क्स को जोड़ा जाएगा, ये देखा जाएगा कि उनकी कॉपी पूरी तरीके से वैलिड है नहीं है, मार्क्स जो है उनके मुख्य प्रश्न पे सही आए हैं नहीं आए हैं और वो कंप्यूटर में सही गए हैं या नहीं गए। अगर उसके बाद भी उनको कोई दिक्कत है तो वो जब हमारा फोटोकॉपी का शुरू होगा वर्क तो वो फोटोकॉपी की अपनी डिमांड कर सकते हैं उस आंसर बुक की जिसमें भी सब विषय में उनको प्रॉब्लम है। उसके बाद अगर वो उससे भी आश्वस्त नहीं है तो वो रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। रिजल्ट घोषित हो चुका है, सारे बच्चे आज बहुत खुश हैं, उनके परिवार बहुत खुश होंगे।
दिल्ली के एक छात्र ने 12वीं परीक्षा के लिए अपनी तैयारी के बारे में आकाशवाणी से अपने विचार साझा किए।
मेरा नाम आयुष्मान शर्मा है और मैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर 5 का विद्यार्थी हूँ। मैंने 12th की बोर्ड परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए। तैयारी के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक्स रेफर करी और मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी थी। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के मैंने उसी में नोट्स बनाए, अंडरलाइन किया, साथ ही साथ कंसाइज नोट बनाए उन टॉपिक्स के जो मुझे कठिन लगते थे। उन नोट्स को ही मैं रोज सुबह उठ के दोहराया करता था। इसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए मैंने मॉक पेपर और सैंपल टेस्ट पेपर भी दिए। PYQs और बाकी ट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए गए टेस्ट पेपर्स को करने के बाद मेरी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होती गई और इन्हीं दो चीजों का ध्यान रखते हुए मैंने अपनी पूरी तैयारी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के अथक परिश्रम और उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। उन्होंने विद्यार्थियों की सफलता में परिवार और शिक्षकों के सहयोग के लिए उनकी सराहना की। लोकसभा के चौथे चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक 62% से अधिक मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल में लगभग 76%, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में 68% से अधिक, झारखंड में 63% से अधिक, ओडिशा में लगभग 63% मतदान दर्ज किया गया। तेलंगाना में 61% से अधिक मतदान की खबर है। उत्तर प्रदेश में 56% से अधिक, बिहार में 54% से अधिक, महाराष्ट्र में 52% से अधिक और जम्मू कश्मीर में लगभग 36% मतदान दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के एकमात्र चरण में आज लगभग 68% और ओडिशा विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग 63% मतदान की खबर है। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते सार्वजनिक बैठकें और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मेगा रोड शो किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। वे वाराणसी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। श्री मोदी कल वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वायदा किया कि यदि केंद्र में कांग्रेस और INGI गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले गरीब किसानों के ऋण माफ करेगी। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार तेज हो रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता का समर्थन मांग रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजधानी की 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा के प्रत्याशी दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव मैदान में है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
राजधानी में चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जी जान से चुनावी मैदान में उतर गए। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आज कीर्तिनगर क्षेत्र के जवाहर कैंप और चूनाभट्टी इलाके में जनसंपर्क किया, तो वहीं इसी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र के लोधी कॉलोनी में लोगों से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। पूर्व दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने कौंडली क्षेत्र के बुधविहार इलाके में महिलाओं के साथ बैठक की। वहीं इसी सीट से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा विश्वासनगर इलाके में एक धार्मिक सभा में शामिल हुए। चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार परवीन खंडेलवाल ने देरावाल नगर में भाजपा के चुनाव कार्यालय में लोगों से संवाद किया। वहीं चांदनी चौक सीट से ही कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल ने शालीमार बाग क्षेत्र में पदयात्रा की और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से चुनावी रणनीति पर चर्चा की। पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने आज मलकागंज में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार भी आज आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई चुनावी रणनीति बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, दिल्ली।
दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपनी स्वीप पहल के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज राजधानी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को कई गतिविधियों के माध्यम से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा टैगोर गार्डन क्षेत्र के एक स्कूल में वैल्यू ऑफ वोट विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को मतदान और प्रत्येक वोट के महत्व के बारे में बताया गया। दिल्ली चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा विकासपुरी के एक स्कूल में भी छात्रों को मतदान प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसके अलावा छात्रों को उनके 18 वर्ष आयु पूरी करने पर जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने और चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए राजधानी में स्वीप अभियान चलाया हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल,
आम चुनावों के मतदान पर विशेष कार्यक्रम,
विभिन्न अंचलों से मतदान की खबर,
संवाददाताओं से मिलेगी सीधी जानकारी,
विशेषज्ञों की भी सुनेंगे राय आकाशवाणी गोल्ड पर।
सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 मतदान स्पेशल।
ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट मामले में कहा है कि आयोग कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्ध है और दिल्ली पुलिस से इस मामले में न्याय की मांग की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग ने कहा कि मामले की जांच के लिए आयोग अपनी टीम भेज रहा है। इसके अलावा आयोग ने दिल्ली पुलिस से भी 3 दिन के अंदर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का कहना है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस उपायुक्त मनोज मीणा ने बताया कि इस संबंध में विभाग को एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ मारपीट हुई है। जांच के लिए पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। श्री मीणा ने बताया कि इस मामले में स्वाति मालीवाल की ओर से विभाग को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने इस घटना की निंदा की है और मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसे न्याय जरूर मिलना चाहिए।
दुखद है ऐसी जानकारी मिलना और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहाँ उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं।
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने अंतर्राज्यीय डकैतियों में शामिल एक इनामी अपराधी को राजधानी के धौला कुआं क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। ये अपराधी कई राज्यों में डकैती और चोरी की वारदात में शामिल था। पुलिस ने इस अपराधी पर 25,000 रूपये का इनाम घोषित किया हुआ था। पुलिस ने बताया है कि इस अपराधी के पकड़ने से कई मामलों के खुलासा होने की संभावना है। दिल्ली नगर निगम द्वारा राजधानी में मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। अभियान के अंतर्गत नगर निगम ने आज राजधानी के सभी 12 जोन के 282 निर्माण स्थलों पर मच्छर प्रजनन की जांच की। इस दौरान 76 निर्माण स्थलों पर मच्छरों के प्रजनन का पता लगा। अभियान के दौरान निगम उल्लंघनकर्ता के खिलाफ 87 नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा उल्लंघनकर्ताओं पर 8,700 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोरेन की याचिका सुनी, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सामाजिक आर्थिक मुद्दों के विश्लेषण से संबंधित स्कॉच ग्रुप ने दावा किया है कि वर्ष 2014 से 2024 तक प्रतिवर्ष औसतन 5,14,00,000 रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। स्कॉच ग्रुप ने आज नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट जारी की। ग्रुप ने वर्ष 2014 से 2024 की अवधि के दौरान किए गए सरकारी और निवेशगत उपायों का अध्ययन किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशगत उपायों से प्रतिवर्ष औसतन 3,16,00,000 रोजगार सृजित हुए, वहीं सरकारी हस्तक्षेप से 1,98,00,000 रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक 62% से अधिक मतदान की खबर। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार लगातार तेज हो रहा है। दिल्ली निर्वाचन आयोग ने स्वीप पहल के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज राजधानी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट मामले में कहा है कि आयोग कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।